नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरय दार्ष्कप्राय शोभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधा अधर सुधापान मालिने वन मालिने महाभाव स्वरूपास्त्वम् कृष्णप्रिय वरीयसे प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका त्वं नमोस्तुते देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी मयि सर्वा कंति सम्मोहिनी परा। श्रीमती राधा रानी की तो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ दिवस है। पूरे विश्व की जननी माता राधिका का आज आविर्भाव दिन है, जिनका नाम लेने से ही भगवान हर जीव के प्रति अत्यासक्त बन जाते हैं। इसलिए जब श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही थी गंगा जी के तट पर, महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी अपने मुख कमल से इस श्रीमद् भागवत का जब अमृत पान करवा रहे थे, तो बड़ी दक्षता से वे राधा रानी का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी उनसे रहा नहीं गया और श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में वे अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी के नाम का उच्चारण करते हैं। श्लोक बहुत ही सुंदर है कि जिसमें गोपिया जो कि भगवान की अनन्य भक्त है वे श्रीमती राधा रानी का स्थान बताते हैं। वह श्लोक रुपया मेरे पीछे दोहराइए। अन्याराधितो नुनाम भगवान हरिरईश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोऽयम् अनयद्रः अन्याराधितो नुनम् भगवान हरिरेश्वर यन्नो विहाय गोविंद इतो यामन यद्रह अन्या आराधितो ननम भगवान हरिरेश्वर यन्नो विहाय गोविंद इतो यामन यद्रह यहाँ पे गोपिया कहती कि निश्चित रूप से वह विशेष गोपी बहुत ही सौभाग्य संपन्न है कि जिसने अपने आराधना से अपनी सेवा से भगवान श्री गोविंद को परिपूर्ण रूप से भजा है, उनका भजन किया है, उनकी सेवा की है और वे इतने उससे प्रसन्न हो गए कि हम सारे गोपियों का त्याग करके वे एकांत में उस गोपी के साथ चलेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वृंदावन में गोपियों के दो ग्रुप है, एक है वाम और एक है दक्षिण। तो दक्षिण विभाग में चंद्रावली जो कि राधा रानी की चचेरी बहन है वो प्रधान है और वाम में श्रीमती राधिका। राधिका इस शब्द का अर्थ है कि जो भगवान को उनकी सारी इच्छाओं के साथ परिपूर्ण रूप में उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करती है उसको राधिका कहा जाता है, जो कि राधा रानी का सबसे प्रिय नाम है जो भगवान रटते हैं राधिका। तो बताया जाता है बृहत गौतमीय तंत्र में कि राधा रानी कौन है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्वा कंति ही सम्मोहिनी परा। वो दरवाजा बंद कर दिया। श्रीमती राधा रानी जो कि दिव्य है वो भगवान की अभिन्न शक्ति है और सर्व लक्ष्मी मई सर्व सारे लक्ष्मियों की वो स्रोत है। और कहा जाता है कि कंति ही सम्मोहिनी परः और जो सारे जीवों के आकर्षक बिंदु है उनको वो आकर्षित करने वाली सुंदर विग्रह है और वो भगवान की पराशक्ति है जिसका आश्रय लेने से जीव इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ देवी है जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार करती है। भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठतम भक्तों में वो श्रेष्ठतम है, इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण प्रिय वरियसी, भगवान श्री कृष्ण को जो प्रिय है उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है, इसे उसको वरियसी कहा जाता है। और उनका नाम जो है जिसका धातु मूल रूप जो है राधिता आराधिता कहा जाता है कि जो भगवान की सेवा करना है, तो उनका नाम ही भगवान की सेवा का द्योतक है और वे स्वयं व्यक्तिगत सेवा का रूप है। भगवान की वह सेविका है, अनन्य सेविका है, और वह भगवान की शक्ति भी है। और कहा जाता है कि वह भगवान की स्त्री स्वरूपा है। आजकल के जो आधुनिक तथा कथित तथा सुशिक्षित जो लोग हैं, वो हर जगह पे समत्व देखना चाहते हैं, स्त्री पुरुष को समान रूप से देखना चाहते हैं। तो भगवान भी अपने समान एक स्त्री को उत्पन्न करते हैं, जो कि राधा रानी है, जो भगवान के समान ही है। तो कहते हैं कि भगवान स्वयं को दो रूपों में विभाजित करते हैं, एक है उनका स्वयं रूप, वे स्वयं, और दूसरा है श्रीमती राधा रानी। और ये किस लिए? ताकि भगवान के जो दिव्य प्रेम की लीलाएं हैं, उनका वो आस्वादन करना चाहते हैं। हालांकि भगवान आत्मा राम है, फिर भी वे सारे आनंद के भंडार होने के पश्चात भी आनंद चखना चाहते हैं, तो वह अपने आप को इस स्त्री रूप में अवतरित करते हैं, और फिर भी वे एक ही है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में चौथे अध्याय के 55 और 56 इन श्लोकों की टीका देते समय प्रभुपाद लिखते हैं कि राधा कृष्ण ये केवल अपने प्रेममय लीला का आस्वादन करने के लिए विभाजित भगवान के दो रूप है, बल्कि वे एक ही, वे अभिन्न है। फिर बताते हैं कि जैसे सूरज और उसकी रोशनी अभिन्न रहती है, वैसे भगवान और श्रीमती राधिका ये दोनों अभिन्न है। और श्रीमती राधिका पूरी तरह से अपने इंद्रिय मान भावनाओं से पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगी रहती है, और निश्चित रूप से इस भौतिक जगत से अपने आप को बचाने के लिए जब ये जीवात्मा श्रीमती राधा रानी के चरणों में अपने मान इंद्रिया भावनाएं और अपनी बुद्धिमता इनको जब लगाता है, तो कहा जाता है कि निश्चित रूप से वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। ये जो आध्यात्मिक जगत है, जहां पर भगवान के साथ अलग अलग प्रकार के रसों का आदान प्रदान किया जाता है, उन रसों को रति कहा जाता है, यानी आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम। ये प्रेम 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इन रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कहा गया है माधुर्य रस। और इस रस की जो शिरोमणि है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो कि भगवान से अभिन्न है। तो श्रीमती राधा रानी ये सारे लक्ष्मियों की स्रोत है, उसके सारे जो अंश अवतार है वही लक्ष्मियां कहा जाते हैं। इसलिए श्रीमद् ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भेष ताभीर्य एव निज रूप तया कला गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की उपासना करता हूं या उनकी पूजा करता हूं कि जो नित्य शाश्वत श्री वृंदावन में वास करते हैं। गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक में भी वास करते हैं, और आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भेष, और उनकी जो आनंद चिन्मय और रस से प्रभावित जो शक्ति है उसके साथ वो नित्य वहां पे विहार करते हैं, और वो शक्ति है श्रीमती राधारानी, जिसे भगवान की पराशक्ति भी कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। और जो व्यक्ति, जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में इस शक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेता है, निश्चित रूप से वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की तीन प्रकार की कांताएं हैं, एक है लक्ष्मी जो कि वैकुंठ में उनके साथ निवास करती है, दूसरी है द्वारका की पत्नियां जो द्वारका में उनके साथ नित्य रूप से निवास करती है, और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है व्रज की गोपियां कि जिनको छोड़कर भगवान कभी रह ही नहीं सकते। वृंदावन परित्यज्य पदम एकोपि न गच्छेत्, वृंदावन का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं रखते। तो उनकी अत्यंतिक प्रिय जो पत्नियां है वे कहा जाता है कि व्रज की गोपिकाएं, और इसलिए हम देखते हैं कि भगवान को जो प्रिय है उनके नाम पहले और फिर भगवान का नाम होता है, और भगवान को सबसे प्रिय कौन है, उनके नाम से भगवान इस दुनिया भर में जाने जाते हैं। और खास करके संत राष्ट्र कृष्ण भावनामृत संघ में कोई भी नंबर मंदिर का निर्माण होता है तो उस मंदिर को एक विशेष नाम दिया जाता है, क्या रहता है ना, शुरुआत क्या रहती है, तो उस मंदिर के विग्रह के नाम से। और विग्रहों के नाम कैसे शुरू होते हैं,
श्री
श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा श्याम सुंदर। तो भगवान को जो प्रिय है उनके नाम भगवान पहले आपको दे देते कि भाई इनका आश्रय लोगे तो मेरे पास आओगे। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान जब अवतरित होते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग लीलाओं कर लीलाएं करने के लिए, तो पहले उनके जो प्रिय है उनका पहले नाम रहता है, लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राम सीता नहीं कहते कभी हम, कैसे क्या कहते हैं, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिम्हा। तो भगवान को अति प्रिय जो रस है, उस रस के जो प्रतिनिधि है उनको भगवान पहले आगे करते हैं, बोलते मेरे पास आना है तो इनका आश्रय। इसलिए 1971 में प्रभुपाद ने लंदन में राधाष्टमी के दिन एक बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया था, जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि राधा रानी ये विश्व जननी है, क्योंकि सारे विश्व के पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और उनकी पत्नी होने के नाते वे पूरे विश्व की जननी है। शास्त्र में मां के लिए कई शब्द दिए गए, जननी ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो जन्म देती है, किस लिए, ताकि जीवन सार्थक हो। और सबसे प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप अगर कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी पिताजी पुत्र के ऊपर कठोर होते हैं उसके व्यवहार के कारण, लेकिन माता हर समय उस पुत्र के प्रति अपने हृदय में कोमल भावनाएं रखती है, वो मृदु रहती है। तो उसी प्रकार से हम कितने क्यों भी नालायक हो, लेकिन अगर मैया की शरण ले लेंगे तो निश्चित रूप से वो हमें भगवान के ओर सौंप देगी। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय, क्योंकि वही एक आश्रय है जो आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि ब्रज की अन्य गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, जो गोपियों की रानी है, बल्कि सारी गोपियां उसके ही अलग अलग रूप है या अलग अलग अंश है। और प्रेम की परिपूर्णता अगर कोई है तो वह है श्रीमती राधा नारायण। इसलिए उज्जवल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि अन्य किसी भी गोपी का प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रेम के साथ तुलना नहीं कर सकते। राधा रानी के कई नाम हैं, उनके गुण के अनुसार, और कुछ नाम इस प्रकार से, गोविंद नंदिनी, कि जो भगवान गोविंद को आनंद प्रदान करती है, गोविंद सर्वस्व, जो भगवान गोविंद के लिए सर्वस्व है। इसलिए कई बार राधा रानी को सर्वेश्वरी कहा जाता है, कि जो ईश्वर की ही सब कुछ है। फिर राधा रानी का और एक नाम है शिरोमणि सर्व कांता, कि सारे कांताओं में, भगवान की सारी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और एक नाम है उनका, वो है कृष्णमयी, जो कि भगवान से अभिन्न है। और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ नाम उनका बताया गया है, वो है राधिका, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की, अपने मन और उनकी इच्छाओं को परिपूर्ण करके सेवा करती है। और उनको सर्वलक्ष्मी भी कहा जाता है, कि जो सारे लक्ष्मियों की स्रोत है, जो कि भगवान की मूल शक्ति है, जो कि भगवान के समान ही है और भगवान के षड ऐश्वर्यों को परिपूर्ण रूप से हमारे सामने प्रस्थापित करती है, उसको सर्व कांति दिखिल कहा जाता है, कि जिसकी कांति सबसे उत्तम है, सबसे सुंदर है, और सारी लक्ष्मियों की जो सुंदरता है, श्री इस शब्द का अर्थ ही रूप है, लावण्य है, और सारे लावण्य की रस खानी अगर कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए उसको मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है, मन मथ मोहिनी। मनमथ यानी जो मन को मथने वाला है। इस भौतिक जगत में कामदेव है, जो हर एक व्यक्ति के मन का मंथन करता है, हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष के मन के मंथन करता है। तो इस मनमथ के मन को मथने वाला वो है मनमथ मनमथ, वो कौन? मदन मोहन। और उस मदन मोहन को मोहित करने वाली एक मोहिनी है, वो कौन है? श्रीमती राधा। तो मदन मोहन मोहिनी, ये भी उनका एक नाम है। और सर्व कांति यानी उस नाम का एक अर्थ ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की सारी इच्छाएं जिनमें परिपूर्ण रूप से रहती है वो, और उनकी सुंदरता, उनका लावण्य, उनका सेवा भाव, उनकी सारी शक्तियां, ये सब भगवान में परिपूर्ण रूप से रहती है, और इसलिए उनको भगवान से अभिन्न भी कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय में 82 से लेकर 96 श्लोक में श्रीमती राधा रानी का वर्णन किया गया है, उनके गुणों का, उनके रूपों का, और वे भगवान की अभिन्न शक्ति है। और इसलिए कहा जाता है कि राधा रानी के बिना भगवान में भगवत्ता नहीं है, और भगवान के बिना राधा रानी में महत्ता नहीं है। तो दोनों परिपूर्ण रूप से, दे आर रियली मेड फॉर इच अदर, वे एक दूजे के लिए है। और इसीलिए इस वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले भगवान के शक्ति को प्राधान्यता दी गई है, और इसीलिए हम राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी, नारायण, इन नामों से भगवान को पुकारते हैं, और भगवान उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बताया जाता है कि भगवान भी स्वयं अपने आप को राधा रानी के माध्यम से ही जानना चाहते हैं, क्योंकि वही उनकी लादिनी शक्ति है जो सबको प्रेम प्रदान करती है। संदिनी, संवित और लादिनी, ये भगवान की तीन शक्तियां हैं। तो लादिनी ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति कही जाती है कि जिसके द्वारा भगवान सारे जीवों को आनंद प्रदान करते हैं और उस आनंद का स्वयं आस्वादन भी करते हैं, और उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो कि रूप उन्होंने रामानंद राय को दिखलाया था। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ये राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है, और राधा और कृष्ण से भिन्न न होने के कारण वे महावदन्याय है। भगवान कई अवतारों में आए लेकिन सबके लिए उन्होंने सब कुछ नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने राधा रानी का भाव ग्रहण किया तब उन्होंने अपना सर्वस्व सबको प्रदान किया, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है महावदन्याय। वदन्याय यानी दयालु, सबसे दयालु अगर कोई है तो वह है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। कहा जाता है कि श्रीमान महाप्रभु के कारण राधा रानी का महिमा इस जगत को मालूम हुआ, अन्यथा कई वैष्णव संप्रदाय है उनको राधा रानी का स्थान ही मालूम नहीं, वे उनके चरणों में अपराध कर लेते हैं। यदि गौर न होता तबे की हो गई, राधार महिमा प्रेम रूप सीमा जगते जानाते के, लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, यदि गौर न हो तो, अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तबे की हो गए, क्या होता, किसी को मालूम ही नहीं होता क्या राधार महिमा, राधा रानी की जो महिमा है महत्ता है वो मालूम नहीं होती, क्योंकि राधा रानी वो प्रदान करती है जो भगवान स्वयं प्रदान नहीं कर सकते, और वो क्या प्रदान करती है, भगवान को ही दे देती है आपको, ये लो इनको संभालो, क्योंकि भगवान ने अपने आप को उनको सौंप दिया है। और उस लीला का आज भी स्मरण, नित्य स्मरण होता है मान मंदिर में, जब आप बरसाना जाते हैं तो श्रीजी मंदिर के पीछे एक टीला है, एक ब्रह्मा का सर कहा जाता है कि ब्रह्मा वहां पे आके तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी तंग आ गए, बोले मैनेजमेंट कर करके मैं अभी तंग आ गया हूं, भगवान ऐसी कोई तो जगह दो कि जहां पे मैं भजन कर सकूं, तो भगवान ने उनको जगह दी ब्रज में, और वो भी कहां दी, अपनी प्रियतमा के पास, श्रीमती राधा रानी का जो निवास स्थान था बरसाना, वहां पे पर्वत रूप से, वहां पे आप देखेंगे चार अलग अलग टीले हैं कि जो ब्रह्मा जी के मस्तक है, और उन टीलों के ऊपर श्री जी का मंदिर है, श्रीमती राधा रानी निवास करती है। तो खास करके जो गौड़ीय वैष्णव है, देवामृत उनके राधाश्रमी के एक प्रवचन में बता रहे थे कि विशेष करके गौड़ीय वैष्णव श्रीमती राधा रानी को अनन्य साधारण महत्व देते हैं, क्योंकि इस गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी आचार्य हुए वे सारे राधा रानी के सेविकाएं हैं, उनके नित्य स्वरूप में, उनके नित्य लीला में वे श्रीमती राधा रानी की सखियां हैं, मंजिरियां हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का हम सीधे तरह से आश्रय नहीं ले सकते, और उनका अगर आश्रय हमें लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उनके जो सेवक है, सेविका है, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि अगर कोई कहता है कि मेरा भक्त है तो मैं उसे मानता नहीं, आदि पुराण में अर्जुन को बोलते हैं कि जो अपने आप को मेरा भक्त कहलाता है वो मेरा भक्त नहीं है, बल्कि जो अपने आप को मेरे भक्तों का भक्त कहलाता है वो मेरा भक्त है, मुदो क्या जाओ जाओ गेड़। बोलो क्या था? उठाओ सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए भक्त जब अपनी व्यक्तिगत पहचान करवाना चाहता है तो वो क्या करता है कि हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपने सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक का स्थान दे दो। महाराज गुणशेखर तो कहते हैं, मत जन्मनि फलमिदं मधुकैटभारे त्वद भृत्य 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 परिचारक भृत्यस्य भृत्य स्मर मम लोकनाथ। कि हे भगवान, मेरा जीवन तब परिपूर्ण हो जाएगा जब आप मुझे अपने भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य सात बार वे कहते हैं कि आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास करके जब आप मुझे पहचानेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी का वो भाव है, वे अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती, बल्कि उसका भाव ऐसा ही रहता है कि वे अपने आप को सबसे हीन मानती। और क्यों भगवान इनके प्रति इतने आसक्त है? एक बहुत सुंदर लीला हुई थी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास। उस सूर्य ग्रहण के समय सारे लोग वहां पे स्नान के लिए आए हुए थे, द्वारका से, वृंदावन से। और उस समय सारे गोप गोपी वे भी आए थे ब्रह्म सरोवर में। उनकी कोई इच्छा नहीं थी वहां ब्रह्म सरोवर में स्नान करके उस सूर्य ग्रहण का पुण्य वगैरह प्राप्त करने की। उनकी केवल एकमात्र मन में अभिलाषा थी, इच्छा थी कि वे उस श्याम सुंदर को देखना चाहते थे, जो बस उनको बोल के गया था कि अब भी आ रहा हूं, आ ही रहा हूं करके, लेकिन आज तक लौटा नहीं था। और उसे जाकर 90 ईयर्स हुए थे, 90 साल हुए थे, और आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए उसको दर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए उस नयनाभिरामम के सुंदरता का आशीर्वाद लेने के लिए सारे गोप गोपियां वहां पे आए। और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर रथ, जिस रथ के ऊपर गरुड़ ध्वज है, गरुड़ चिन्हांकित ध्वज है, उस रथ में विराजमान होकर द्वारकाधीश वसुदेव कृष्ण आ रहे हैं, और उनके साथ बलदाव जी और उनकी बहन सहोदरा सुभद्रा भी है। लेकिन भगवान की उस वेशभूषा को देखकर सारे ब्रजवासी सोच में गए, ये कौन है? ये तो वो श्याम सुंदर नहीं है जिसको हम देखना चाहते हैं। ये राजसी वेश धारण किया हुआ, ये तो हमारा कृष्ण नहीं है कि जिसके प्रति हमारे मन इतना आसक्त है वो उनका दर्शन करना चाहते। भगवान का वो राजसी वेश, सुंदर सुवर्ण मुकुट धारण किया हुआ, जो वक्षस्थल वनमालाओं से सुशोभित रहता था, वो वक्षस्थल कई सुवर्ण आभूषणों से अलंकृत था, जिन भुजाओं पर वन की लताएं बांधी जाती थी उन भुजाओं पर सुंदर रत्नांकित बाहुबंध थे, जिसके कमर में केवल एक पीत वस्त्र बांधा रहता था जिसमें एक बांसुरी लटकी रहती थी, वहां पे एक वीर योद्धा का क्या कहते हैं उसको कमर पट्टा था। ये सारा देखने के बाद वो कुछ क्षण के लिए अचरज में गिर गए, ये क्या? लेकिन जब भगवान ने उन सारे गोप गोपियों को देखा तो अपने आप को अपने मूल रूप से रोक नहीं पाए, वही रूप उन्होंने जो धारण किया जो उनके उन अनन्य भक्तों को प्रिय था, वही श्याम सुंदर दिव्य वृंदारण्य में जो वो अपना स्मेरात त्रय परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टि, वही उन्होंने अपना त्रिभंग ललित जो कि एक अचरज में डालने वाली नेत्र कटाक्ष को देख कर और अपने ओठों पर वेणु बजाए करते थे वो रूप उन्होंने वहां पर दिखाया। और केवल रूप को प्रदर्शित नहीं किया बल्कि आंखों में से सतत अश्रु धारा बहने लगी उनकी और रथ से नीचे उतरे और दौड़ते हुए इन सारे ब्रज के गोप गोपियों के पास आए और आने के पश्चात बताने लगे कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, आप इतने मुझसे अत्यासक्त है लेकिन मुझे आप में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं और मैं केवल आपके लिए दुख का ही कारण बना हूं, सुख तो मैं नहीं दे पाया आपको। ऐसा कहकर कहा जाता है कि भगवान झुक गए और उन्होंने उन सारे गोपियों में उस गोपियों के चरणों को स्पर्श किया जो कि केवल उनके दर्शन मात्र से मूर्छित हो गए थे। उस अत्यंतिक अनन्य प्रेम के कारण वो मूर्छित हो गए थे। जैसे उसने भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श की अनुभूति की वो अपनी मूल चेतना में आ गए और वो कहने लगे क्या कर रहे हो आप तो हमारे दुख के कारण नहीं है बल्कि हम सारे आपके दुख के कारण है, हम नहीं जानते कि एक क्षण भी आप हमारे सिवा नहीं रह सकते, चाहे आप निद्रा अवस्था में हो या जगे हुए हो, नित्य रूप से केवल आप हमारे बारे में ही चिंतन करते हैं, यह हमें मालूम नहीं है और आपकी असली चिंता का कारण तो हम है, इसीलिए सारे दोष जो है वो हम में है, हम आपके दोषी है कहकर राधा रानी भगवान के चरणों को पकड़ लेती है। और तब भगवान कहते हैं कि हे राधिके, यही तुम्हारे गुण के कारण मैं पूरी तरह से तुम्हारे वश में हूं, तो अनन्य शरणागति जो है चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है यही राधा भाव है, राधार महिमा प्रेमेर सीमा जगते जानाते, क्या राधारानी की प्रेम की सीमा इस जगत को मालूम नहीं होती जब तक महाप्रभु और महाप्रभु की जो शिक्षा है उस शिक्षा की चरम सीमा अत्यंतिक श्लोक क्या है, क्या बताते हो, हर रोज गाते हैं आश्लेषवापादरतां पिनश्मां अदर्शनां मर्महतां करोत्वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सयेव नापरः। आश्लेषवा, आप मुझे गाढ़ आलिंगन दो, पादरतां पिनश्वा चाहे अपने पैरों तले रौंद डालो, केवल लात नहीं मारो बल्कि रौंद डालो, पिनष्ट माम पिनष्ट यानी क्रश कर देते हैं जैसे हम पीसते हैं पीसना, चाहे आप रौंद डालो। आश्लिष्वा पादरताम पिनष्ट माम अदर्शनाम मर्म हताम करो तुवा, चाहे मुझे दर्शन दो या मत दो और चाहे ऐसे कठोर वचन बोलो कि जिससे मेरा हृदय मर्म हाथ हो जाए, मर्मी लगना बोलते हैं ना, कई बार किसी आयुध के द्वारा हम किसी को मारते तो शरीर में दर्द होता है लेकिन शब्दों के द्वारा अगर हम किसी पे प्रहार करते हैं तो वो क्या होता है, मर्म में लगता है, मर्म कहते हैं उसे। अदर्शना मर्म हता करो तो वह मर्म में मारो, फिर भी यथा तथा वा विदधातु लंपटो, भगवान को यहां पर लंपट कहते हैं, मालूम है तुम लंपट हो, मेरे प्रति तुम्हें आसक्ति नहीं है, लेकिन मेरी भावना क्या है, मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, कि हे भगवान आपके सिवा अन्य कोई भी मेरा प्राणनाथ नहीं है, चाहे आप मुझे किसी भी स्थिति में डालो। और ये भाव किसका है, श्रीमती राधारानी का। उन्होंने कभी भी भगवान के साथ झगड़ा नहीं किया, क्योंकि उनसे होता ही नहीं था। जब ब्रह्मा जी गए तो पूछा कि भाई असुरों का इतना ये हो रहा है, प्रताप हो रहा है, गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है, तो भगवान कहते चिंता मत करो मैं स्वयं आ रहा हूं। और राधा रानी ये सुन लेती है और वहीं पे मूर्छित हो जाती है, बोले आप जा रहे हो, केवल मैं आ रहा हूं, यानी आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, वो सुनने से ही वो मूर्छित हो जाती है, यानी इतना भी वो विरह सहन नहीं कर सकते, इतना अत्यंतिक प्रेम है उनको भगवान के प्रति। और इसलिए अपनी उज्ज्वल नील वाणी में श्रीमती राधा रानी के बारे में बताते समय रूपा गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से उनका वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि भगवान की वे अल्लाह देनी शक्ति है जो कि भगवान को प्रेम प्रदान करती है, और जब भगवान चाहते हैं उस प्रेम का आस्वादन करना तो वो इस शक्ति को राधा रानी के रूप में स्थापित करते हैं। और इसलिए रूपा गोस्वामी जब राधा रानी की स्तुति करते हैं तो वह कहते हैं महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका त्वं नमोस्तुते। द एसेंस ऑफ दैट लव इज द इमोशन कॉल्ड भाव। द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ इमोशन इज महाभाव और ग्रेट भाव। महाभाव इज फुल ऑफ द प्लेजर पोटेंसी and it is an exhibition of the highest love for Lord Krishna. Shri Radha Rani is the embodiment of that transcendental consciousness founded in Mahabhava. Her mind, senses, body are steeped in that highest sort of a love for Krishna. She is as spiritual as the Lord Himself. In fact, being the personification of Ladini Shakti, the pleasure-giving energy of the Lord, she is the only source of enjoyment for the Lord. This pleasure potency manifests spiritually as Radharani in a way that attracts even Lord Krishna. He takes no pleasure in anything material. The Lord could never enjoy anything that is less spiritual than Himself. Therefore, Radha and Krishna are identical. Then she expands herself into different forms of, known as Lalita, Vishakha and her other confidential associates. That increases the mood of divine love. However, being Lord's Ladini feature, she is also the ultimate source of all happiness for the living beings. In other words, everything that gives pleasure and happiness within the spiritual or material world is because of her and the energy that emanates from her. That's what Prabhupada says in Adi Leela, chapter 4. Verse number 68-72. और इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवान का हम नाम लेते हैं, विशेष करके इस महामंत्र में भी, तो सबसे पहले हम किसको संबोधित करते हैं, हरे। हरा राधा रानी का नाम है और हरे ये उनका संबोधन है। तो हम जब इस महामंत्र का जाप करते हैं तो पहले राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, भगवान कृष्ण जो कि राम है, जो कि सब के आनंद के भंडार है, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनकी सेवा में हमें लगा। तो जब हमारे मन में स्वाभाविक रूप से सेवा भावना बढ़ती है तो समझना चाहिए कि राधा रानी की कृपा हो रही है, और जब सेवा से भाग रहे तो समझना चाहिए कि महामाया की कृपा हो रही है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि सबको सबसे पीछे रहना चाहिए और दूसरों को आगे करना चाहिए। ताकि भगवान सबसे पहले फिर आपको देखते हैं, कौन है वो जो धक्का मार रहे हैं उसको लोग पहले बोलते हैं। और इसलिए भगवान के भक्त है वो अपने आप को सबसे दीनहीन मानते हैं, जो कि राधा रानी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और श्रीमती राधा रानी के कई गुणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है और अन्य पुराणों में किया गया है, तो उसमें से केवल 25 गुण हम पढ़ेंगे जो कि उज्ज्वल नीलमणि में, नीलमणि ग्रंथ में रूप गोस्वामी बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उनके जो 25 गुण है जो भगवान को उनके प्रति आकर्षित करते हैं वे क्या है। शी इज वेरी स्वीट, बहुत ही मधुर है। शी इज ऑलवेज फ्रेशफुल यूथफुल, वो हर समय नव किशोरी है। हर आईज आर रेस्टलेस, उनकी आंखें अस्थिर है। शी स्माइल्स ब्राइटली, उनका जो हास्य है बहुत ही मधुर है, स्मित करने वाला। शी हैज ब्यूटिफुल ऑस्पिशियस लाइन्स, उनके मुखकमल तथा हाथों पे बहुत ही सुंदर शुभ रेखाएं हैं। शी मेक्स कृष्णा हैप्पी विथ हर बॉडीली अरोमा, वो अपने शरीर के गंध से भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करती है। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो गाने में सर्वकुशल है। हर स्पीच इज चार्मिंग, उनकी जो वाणी है सबको विस्मित करने वाली है। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन जोकिंग एंड स्पीकिंग प्लेजेंटली, हास्य वदना जिसे कहा जाता है, कि जो अपने हंसने से और अपनी भाषा से दूसरों को भी हंसा देती है। शी इज कनिंग, वो क्या कह सकते हैं कनिंग, बहुत चतुर है, धूर्त भी नहीं, चतुर, यह शब्द बहुत ही उत्तम है, वो बहुत ही चतुर है। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन एग्जीक्यूटिंग हर ड्यूटीज, वो कर्तव्य दक्ष है। शी इज शाय, वो हाँ बंगाली में की
लाजवती,
वो शर्मीली है। शी इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, वो हर समय आदरणीय है और आदर देने वाली भी है। शी इज ऑलवेज काम, वो शांत है। शी इज ऑलवेज ग्रेव, वे गंभीर है। शी इज एक्सपर्ट इन एंजॉइंग लाइफ, अपने जीवन को उत्तम रूप से व्यतीत करने के लिए वे दक्ष है। शी इज सिचुएटेड इन द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एक्सटैटिक लव, प्रेम की दिव्य स्थिति में वो स्थित है। शी इज द रिजर्वर ऑफ लविंग अफेयर्स इन गोकुल, गोकुल में जो भी भगवान के प्रणय प्रलाप है उनकी वो रसखान है। शी इज द मोस्ट फेमस ऑफ सबमिसिव डिवोटीज, वो सारे शरणागत भक्तों में सर्व कीर्तिमान है, सर्व परिचित है, सुप्रसिद्ध है। शी इज वेरी अफेक्शनेट टू एल्डरली पीपल, बड़ों के प्रति प्रेम पूर्वक आदर प्रदान करने वाली है। शी इज वेरी सबमिसिव टू द लव ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने सखियों के प्रेम का उत्तम रूप से आदान प्रदान करने वाली है। शी इज द चीफ गोपी, गोपियों में वो सर्वश्रेष्ठ है। शी ऑलवेज कीप्स कृष्णा अंडर हर कंट्रोल, वो हर समय भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में रखती है। अगर तो फिर अभी और she possesses unlimited transcendental qualities just as Lord Krishna does. भगवान श्री कृष्ण के समान उनमें अनन्य दिव्य गुण असीमित मात्रा में है। श्रीमती राधारानी के अन्य कई गुण विदग्ध माधव में भी रूप गोस्वामी बताते हैं। वे कहते हैं कि श्रीमती राधारानी की जो आंखें हैं वो जो कि खिले हुए अभी रतन खिले हुए नील कमलों को अपने आकर्षण से आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं कमलायताक्ष। और उनकी जो सुंदरता है, कहा जाता है कि वो प्रफुल्लित कमल का की सौंदर्यता को भी पीछे हटा देते हैं। और उनकी आभा जो है शरीर की वो सुवर्ण को भी लज्जित कर देती है, ऐसा उनका हिमांग वर्ण है। और ऐसी अद्भुत, अब शब्दों के द्वारा जिसको व्यक्त नहीं किया जाता, ऐसे सौंदर्य से परिपूर्ण है श्रीमती राधारानी। और कहा जाता है कि उनका जो उनके शरीर की जो प्रभा है वो सैकड़ों चंद्रमाओं को रात में लज्जित कर लेता है और दिन में सूरज उनसे लज्जित होकर छुप जाता है, ऐसे उनके शरीर की कांति है। और श्रीमती राधारानी जो कि भगवान की बहुत ही अति प्रिय है, वो दिन और रात दोनों को भी प्रकाशित कर देती है। और इसीलिए उनके मुख की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर उनका मुख की तुलना चंद्र से की जाए तो चंद्र में भी लांछन है, लेकिन राधा रानी में कोई भी लांछन नहीं है। और सूरज से की जाए तो सूरज में इतना तेज है कि हमें आंखें बंद करना पड़ता है, लेकिन उनकी चेहरे की आभा ऐसी है कि सारे जीवों की आंखें केवल उनके प्रति आकर्षित हो जाती है। यहां पे देख सकते हैं श्रीमती राधारानी का मुख विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी बताते हैं। और वैसे कहा जाए बोला जाए तो राधारानी के बारे में बोलते रहेंगे तो अगली राधाष्टमी आ जाएगी, लेकिन हम यहीं पे विश्राम करते हैं, क्योंकि श्रीमा श्रीमती राधारानी के गुणों का वर्णन भगवान स्वयं नहीं कर पा रहे, हम जैसे बुद्धूराम क्या करेंगे। इसलिए केवल एक अनन्य उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं हम कि हे माते, अगर आप चाहें तो आपके प्राणनाथ के चरणों में हमें डाल दो, अन्यथा हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है, उपाय नहीं। राधे जय जय माधव दयिते। राधारानी कौन है? जो माधव को देने वाली है। तो अगर आपको माधव के पास जाना है तो क्या करना चाहिए? राधे जय जय, राधा रानी का जय जयकार करना चाहिए। और आज वो दिन है, प्रभुपाद कहते हैं कि जिस दिन राधा रानी बहुत ही प्रसन्न रहती है, कई हजारों वर्ष पूर्व इसी भाद्रपद मास के अष्टमी के प्रातः काल में वृषभानु जी यमुना में नहाने के लिए चले थे। जैसे यमुना की तरफ वो जा ही रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े विस्मित हो गए, अचंभित हो गए। तो उन्होंने एक ऐसी अलग आभा देखी, प्रभा देखी कि जिसके प्रति वो आकर्षित हो गए और उसी दिशा में वो जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि उस यमुना के जल में सहस्त्र दल वाला एक कमल था और जिस कमल के ऊपर सुवर्ण रंग की एक सुखद सुहोनी लेटी हुई थी। उसको देखने के पश्चात वृषभानु बाबा के हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न आया कि उन्होंने वैसे ही उठाया उसको और सीधा लेके आए घर पे, और उस कन्या को उन्होंने सौंप दिया माता कीर्तिदा को। और कीर्तिदा ने देखा वो लाली बहुत ही सुंदर थी, जिसके दर्शन करने के लिए कहा जाता है कि नारद मुनि ब्रह्मांड के अपना भ्रमण छोड़कर मथुरा में आए और हर घर में ढूंढने लगे कि अभी भी कोई ने जन्म लिया है क्या, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। बोले कौन है, ऑलरेडी 15 दिन पहले तो भगवान आविर्भूत हुए थे, उनकी वहां पे लीलाएं चल रही थी, लेकिन वे राधा रानी का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए घूमे 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 अंत में बरसाना पहुंचे, सॉरी गोकुल महावन में थे, गोकुल महावन में आए, यहाँ पे ऋषभानु भी रहा करते थे उस समय। और बोले कि बाबा आपके कितने बच्चे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा कि मुझे दर्शन करना है आपके बेटी के करके। बोले बाबा आपको कितने बच्चे हैं, राधा रानी की आंखें बंद थी, उसने खोली नहीं थी, इसलिए लज्जा से ऋषभानु और कीर्तिदा बोले ही नहीं कि हमें एक पुत्री भी है करके। उन्होंने बोला हमें केवल पुत्र है। बोले नाम क्या है उसका, बोले श्रीधामा। अच्छा तो बोले फिर यही पे वो है जो मेरे नायक को अपने प्रति आकर्षित करने वाली है, तो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं, तो अभी कुछ कारण ढूंढना पड़ेगा। तो नारद जी बताने लगे कि मेरे पास ऐसी कुछ सिद्धि है कि मैं सारे अचंभित कार्य करा सकता हूं, जिसको आंखें नहीं उसकी मैं आंखें खोल सकता हूं। कीर्तिदा माता ने जैसे ही सुना, माता तो माता है, नित्य अपने बच्चों के हित में सोचती रहती है, तो उसने तुरंत कहा अरे हाँ हमें एक लाली है जिसकी आंखें नहीं खुली है। तो बोले चलिए, और फिर तुरंत किसी को बिना पूछे देखे घुस गए सीधा अंदर। दो ही व्यक्ति है जो जिनको कहीं पे भी प्रवेश बंद नहीं कहा गया, एक है बच्चा और दूसरा है सन्यासी। वो कहीं भी घुस सकते हैं क्योंकि उनमें निष्पाप वृत्ति रहते है, किसी के प्रति भोग भावना या किसी के प्रति द्वेष उनको नहीं रहता, इसलिए वो कहीं भी जा सकते। नारद मुनि सीधा कीर्तिदा माता के रूम में पहुंच गए, जहां पे बहुत ही सुंदर क्या बोलते हैं उसको झूले में इस सुवर्ण की कांति धारण की हुई कन्या आनंद के साथ खेल रही है, लेकिन आंखें बस। तो बाबा ने बाबा और मैया को कहा, नारद जी ने, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कार्य करने जाने वाला हूं, और आप चाहते हैं कि आपके लाली की आंखें खुले तो आप बाहर जाइए। बस कीर्तिदा माता बाबा जी को लेकर बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई ब्रह्मवर्त पुराण में वर्णन कहा जाता है कि उस समय नारद जी ने राधा स्तव और राधिका के जो सहस्त्र नाम है उनका पाठ चालू किया, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, बोले ये संधि फिर से प्राप्त नहीं होने वाली है, तो मैया का गुणगान करना ही चाहिए। तो बस उन्होंने उस समय राधा स्तव शुरू कर दिया, भाव विवर होकर नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। एक सन्यासी पूरा विरक्त, वो पागल हो गया, मस्त हो गया, अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि राधा रानी की उस कृपा को प्राप्त की। इसलिए कहा जाता है कि राधा रानी हालांकि स्त्री होने के पश्चात भी सनक सनातन वर्णित चरित, जिनकी महिमा का वर्णन सनक सनातन जैसे पहुंचे हुए ऋषिवर भी करता है, क्योंकि वो सर्व सर्वेश्वरी प्राणेश्वरी है, भगवान श्री कृष्णचंद्र के हृदय को चुराने वाली। और उसी समय बाबा अंदर आए, देखा तो नारद जी कुछ अलग ही रूप में धारण किए हुए हैं, तो फिर नारद जी अपने बाह्य स्थिति में आ गए, प्रणाम किए, बोले मैं जा रहा हूं, अभी एक कार्य कीजिए, बहुत बड़ा उत्सव मनाइए और उस समय आपकी पुत्री जो है वो आंखें खोल देगी। बोले ऐसे कैसे होगा, तो बोले होगा। और उसी समय अघटन घटना पटियसी वहां पे आ पहुंचे भगवान श्री कृष्णचंद्र। उनको तो मालूम था, वो तो उनके बिना रह नहीं सकते थे, तो मैया और नंद बाबा के हृदय में उन्होंने इच्छा जागृत की कि चलो अब जाके वृषभानु नंदिनी को देखे तो बस आए वहां पर। और कहा जाता है कि उस समय भगवान 15 दिन के थे, चल रहे थे, गए वहां पे, झोला पकड़ लिया और अपनी जो सर्वेश्वरी है उसके मुख कमल को निहारा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दृष्टि क्षेप राधा रानी के मुख कमल पे हुआ, तुरंत उन्होंने आंखें खोली, क्योंकि आंखों का जो सर्वस्व है नयनाभिनावम, जो नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला है, वही विग्रह उनके सामने था। और राधा रानी ने अपने पहले व्यवहार से ही हमें सिखाया कि भाई देखना है तो देखने लायक एक ही व्यक्ति है, बाकी किसी का मुंह देखने लायक नहीं। इसलिए कहा जाता है कि प्रातः स्मरणीय प्रातः विलोचनीय, सुबह में अगर किसको देखना है तो इनको देखो। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन किया, उन्होंने अपनी आंखें खोली और बस कीर्तिदा और वृषभानु जी की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई कि उनकी लाली देखना शुरू की। और उसी लाली ने हमें भी दिखाया कि ये कृष्णचंद्र कौन है। तो आइए उसी लाली के चरणों में प्रार्थना करते हैं ताकि एक दिन हम उनके सेवकों के सेवक बनकर भगवान की कृपा और प्रेम को प्राप्त कर सके। बोलो श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की।